बाबा के मधुबन घर में आप सभी तपस्वियों का हार्दिक स्वागत है। लोग हिल स्टेशन पर घूमने आते हैं और बाबा के बच्चे तपस्या करने आते हैं। वे घूम फिर कर आनंद अनुभव करते हैं। हम बाबा की याद से ज्ञान की गहराई से रिफ्रेश होते हैं, न सिर्फ रिफ्रेश लेकिन और रिचार्ज और शक्तिशाली बनते हैं। बाबा को पाने के बाद और कुछ बाकी रहता ही नहीं। अनेक जन्मों की भक्ति का फल क्या मिला हमें? बाबा मिले, भगवान मिले। और भगवान मिला तो सब कुछ मिलता है, क्योंकि संगम युग में भगवान भगवान के रूप में नहीं लेकिन पिता के रूप में मिलते हैं, सर्व संबंधों के रूप में मिलते हैं। हम उनके बच्चे बनकर जो उनसे पाना चाहे वो हम पा सकते हैं। भक्ति में सारी मेहनत की भगवान को पाने के लिए। सत्य क्या है वो जानने के लिए। भक्ति का इतिहास तो जानते हैं सब, क्या क्या मेहनत करते हैं, कितने व्रत उपवास तीर्थ यात्राएं भक्ति भजन कथा कीर्तन व्रत दान पुण्य पता नहीं क्या क्या करते हैं। इंसान ये जरूर समझता रहा कि भगवान को पाना चाहिए, तभी इतनी मेहनत करते रहे। भल सही ज्ञान नहीं था, मानते थे पर जानते नहीं थे, है ना? तो भक्ति की सारी मेहनत भगवान को ढूंढने में है, पाने में है। सिर्फ पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये हमारा सौभाग्य कि हमें भगवान मिल गए, मिल गए निश्चय पक्का। भले इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, भक्ति में गाते थे आंख न जाने दिल पहचाने, मूरतियां कुछ ऐसी। इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देने वाला वो नहीं है, इन आंखों से न देख सकते न जान सकते, पर दिल पहचानता है, सद्विवेक पहचानता है। दिल माना सद्विवेक, सद्बुद्धि पहचानती है। जब सही परिचय, सही ज्ञान मिल जाता है तो बुद्धि योग अपने आप बाबा से लग जाता है, है ना? भाई आपसे मिलना है पर आप कौन है, कहाँ रहते, क्या करते, कुछ पता ही नहीं तो मिलन कैसे होगा, है ना? रास्ते में मिल भी जाएंगे तो भी पता नहीं चलेगा। वो सही पहचान बाबा ने दी तो मनोमिलन बाबा से हो गया। उनसे तो मनोमिलन है ना, कोई फिजिकल मीटिंग तो नहीं, मन का मिलन है। अब बुद्धि योग भटकने का सवाल नहीं, क्योंकि कोई खोज नहीं है। आत्मा को जब तक सत्य नहीं मिलता बुद्धि भटकती है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, सत्य है। जब तक सत्य और अविनाशी प्राप्ति नहीं होती मन बुद्धि भटकते। जैसे ही सत्य ज्ञान मिल गया और आत्मा को निश्चय हो गए, मन से भटकना, तन से भटकना समाप्त हो गए, है? क्योंकि परख आ गई। अब जो बाबा कहते हैं बस वो ही जीवन में धारण करने का हम पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने भक्ति का फल सत्य ज्ञान हमें दिया, जिस ज्ञान से हमें समझ मिलती है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भक्ति में सही ज्ञान नहीं, भावना है, श्रद्धा है। कोई न कोई धर्म संप्रदाय, महात्मा धर्मात्मा के चिंतन का ज्ञान है ना। हरेक ने अपनी साधना अनुसार, अपने चिंतन अनुसार, जिसने जहां तक जैसा सोचा समझा अनुभव किया वो बातें उन्होंने हमें बताई और वो हमारी बुद्धि में रही। मूल सत्य कोई भी नहीं बता सकता। देखो ये हॉल बना हुआ है, हम हरेक इसके बारे में अंदाजे की बात कर सकते हैं। कोई कहेगा लगता है ये 20 साल पहले बना होगा, कोई कहेगा पता नहीं ये पत्थर से बना है, माना हम तो अंदाजे की ही बात कर सकते हैं। पर सही बात कौन बता सकता है? जो उसका मालिक है, जिसने बनाया बनवाया, उनको पता है ना? तो दुनिया क्या है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, इन सब बातों का ज्ञान, और सब तो अंदाजे से ही बताएंगे ना, है ना? भाई मूल सत्य क्या है वो तो जो मालिक है वो ही बता सकते हैं। तो बाबा ने आकर वो सत्य ज्ञान हमें दिया तो उसके आधार से राइट क्या है रॉन्ग क्या है वो हम परख सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हम समझ सकते हैं। और जब वो हम समझ जाते हैं तो स्वाभाविक है कि जो कुछ असत्य है, अपवित्र है, असार है, वहां से बुद्धि योग हट जाएगा और जो सत्य है, शुद्ध है, सार है, वहां हमारा बुद्धि योग लग जाए। तो ये ऑटोमेटिक है, ज्ञान समझने से और निश्चयात्मक बुद्धि बनने से ये ऑटोमेटिक हो जाता है कि जो व्यर्थ अपवित्र नकारात्मक है वहां से मन हट जाएगा, उसे वैराग्य कहते हैं। इसलिए गीता में बताया है, अर्जुन पूछता है भगवान से कि आप इतना योग के बारे में बात बताते हैं परंतु मेरा तो योग आपसे लगता ही नहीं है। तो उससे दो बात कही कि अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन मेरे में लगता जाएगा। तो सद्ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता, वैराग्य माना वो नहीं भक्त दुनिया छोड़ना, घर बार छोड़ना, भगवा पहनना, माथा मुंडाना, जटा बढ़ाना, वो वैराग्य नहीं। वैराग्य की व्याख्या ये है कि जो असत्य है, असार है, अपवित्र है, अयथार्थ है, वहां से राग समाप्त करना, वहां से आसक्ति मिटा देना, बुद्धि वहां से हटा लेना। इसलिए आप देखिए लोग दुखी होते हैं फिर भी वैराग्य रहे है ना। कई बार लोग सोचते हैं ना जैसे हम लोग ज्ञानी योगी बनते हैं, समर्पित होते हैं, ये सफेद कपड़े पहनते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, तो दुनिया में कई लोग क्या सोचते हैं कि जो दुखी होते हैं, विधवा है, त्यक्ता है, वो भगवान के बनते हैं, वो ऐसा आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते हैं। पर हम सब ने देखा है दुनिया में कि लोग जो दुखी है, जरूरी नहीं वैराग्य, दुखी है। हमने एक बहन को देखा, इसका पिताजी ले आता था, एक बार, दो बार, तीन बार शादी हुई, तीनों बार अलग हुए, फिर भी दुखी थी, पर योगी बनने का विचार नहीं। फिर भी तो दुख से संसार का त्याग नहीं हो सकता। दुखी सारी दुनिया है, कोई त्याग करने तैयार है? समझ से त्याग कर सकते, सही ज्ञान से वैराग्य आता है कि अब जिसमें प्राप्ति नहीं, कल्याण नहीं, वहां मुझे बुद्धि लगानी नहीं है। इसलिए हमारा योग अब बाबा से लगता है, सत्य से लगता है। उसके लिए हमें रोज अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अनेक जन्मों से देहभान के वश बुद्धि भटकाने का ही अभ्यास हुआ। कब से देहभान में आए? द्वापर युग से, तब से लेकर अब तक। बाबा कहते हैं ना, कलयुग अंत तक 63 जन्म देहभान में रहे, और देहभान में जब हम आएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा बुद्धि योग देहधारियों में, दुनिया में, व्यक्तियों में, संबंधों में, पदार्थों में, बातों में भटकता रहता है। तो अनेक जन्मों से मन बुद्धि अनेक बातों में लगाना, भटकाने का ही अभ्यास हुआ। अब सत्य समझ में आया तो अब हमें मन और बुद्धि को एजुकेट करना होगा, उनको प्रैक्टिस देनी होगी, है ना? कोई भी चीज नई सीखते हैं तो हमें अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर वो इजी एंड नेचुरल हो जाता है। देखो, साइकिल सीखते हैं तो पहले बुद्धि, नजर कहाँ जाती है? कुमारियां बताओ, पेडल पर, है ना? हमें सिखाने वाला कहते हैं उधर नहीं, सामने देखना है, पर हमारी बुद्धि, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना, प्रैक्टिस हो जाने के बाद फिर देखना पड़ता है पेडल कैसे मारना है, नहीं, फिर हमारी नजर अपने आप सीधी रहती है। तो हर बात में प्रैक्टिस चाहिए। अब हमें बार बार ये अभ्यास करना है। पहला अभ्यास कौन सा करते हैं? देह भान से न्यारा होना, ये पहली प्रैक्टिस योग की है कि देह भान से डिटैच होना। हर क्षण देह द्वारा कर्म करते हुए देह भान से न्यारा रहना, कितनी बड़ी चीज है। कर्म भी हर क्षण शरीर से ही करना है, शरीर को संभालना भी है, है ना? खाना पीना भी है, पर देह भान से न्यारा। बाबा की मुरली में देखते हो ना कि बाबा ने देहभान मिटाने के लिए कितना अभ्यास किया। बाबा क्या क्या चिंतन करते थे, मुरली में आता है ना, रूहानी बाप रूहानी बच्चों के सामने बैठकर समझाते, बाबा अपने आप को पक्का कराते। बाप मुख द्वारा बोलते हैं, तुम बच्चे कान द्वारा सुनते हो, ये प्रैक्टिस है। तो पहली प्रैक्टिस हमारी है देह भान से न्यारा आत्म भान में स्थित होना। जब तक हम ये फाउंडेशन पक्का नहीं बनाते, हमारा योग निरंतर बाबा से नहीं लग सकता। क्योंकि बाबा किसका पिता है, आत्माओं का है, शरीर का नहीं। शिव बाबा को याद करने वाली कौन है, आत्मा शरीर नहीं है। शरीर भान में रहेंगे, शरीर के मित्र संबंधी याद आएंगे, आत्मा भान में रहेंगे तो ऑटोमेटिक बाबा याद आएगा। ये पहली प्रैक्टिस। इसलिए भगवान का पहला आदेश कौन सा है, गीता में भी क्या कहा है, देह सहित देह के सर्व धर्म संबंधों को भूल एक मुझे याद करो। बस इस एक वाक्य में योग की पूरी विधि आ गई। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, भगवान ने ये आदेश क्यों दिया। भले हमारी हमें लगता हो कि देह संबंध में सुख मिलता है, प्यार मिलता है, लेकिन अगर उसमें सुख प्यार मिलता तो भगवान क्यों कहते इसको छोड़ो, भगवान क्यों कहता इसको छोड़। बाबा कहते हैं ना, देहधारी का प्यार प्यार नहीं है, मार है। आत्मा को बांधने वाला है, मुक्त करने वाला नहीं। देहधारी का प्यार आत्मा को गिराने वाला है, उठाने वाला नहीं है। और लोग खुद ही कहते हैं, वी फॉल इन लव, हम प्यार में गिरे, फॉल इन लव, राइज इन लव कहते हैं, हम प्यार में गिर गए, हमारा उत्थान हुआ, ऐसा कोई कहता है नहीं। देहधारी का प्यार आत्मा को अशुद्ध बनाने वाला है। इसलिए बाबा ने पहला आदेश दिया, देह भान छोड़ो। इसलिए हम स्व में स्थित होते हैं, जो हमारा वास्तविक अनादि अविनाशी आत्म स्वरूप है, हम उसमें स्थित होते हैं, उनके स्मृति में रहते, उनके चिंतन में रहते। तो पहला है देह भान से डिटैच होना, देह देह के संबंध, दुनिया वैभव पदार्थ सब बातों से बुद्धि को न्यारा करना, ये पहली प्रैक्टिस। पहले हम मन को वहां से न्यारा विड्रो करते कछुआ बताते है ना शिव के मंदिर में कछुआ क्यों बताते देखते है ना पता है माताओं को पता है ना भाइयों ने देखा शिव के मंदिर में नंदी के आगे नीचे क्या होता है क्यों दिखाते हैं भक्ति में पता ही नहीं था भक्ति में मालूम ही नहीं था कि यहां कछुआ क्यों दिखाते तो शिव बाबा और नंदी कौन ब्रह्मा बाबा और कछुआ कौन हम योगी बच्चे हम योगी हमारी यादगार है कि जैसे ही बाबा हमें मिलते हैं सद्ज्ञान मिलता है हम समेट कर अपनी शांत स्थिति में स्थित हो जाते हैं डिटैच कई बार हम योग में बैठते हैं हमें अनुभव क्यों नहीं होता है क्योंकि हम समेट नहीं पाते बैठे हैं बाबा की याद में पर बुद्धि से सब्जी लेने भी जा रहे स्कूल में बच्चे को छोड़ने जा रहे क्योंकि बुद्धि समेटती नहीं इसलिए लाइट लाल से सफेद हो जाती है पर हमारा विमान तो उड़ता ही नहीं हम तो यहीं घूम रहे हैं किचन में जा रहे हैं ऑफिस में जा रहे हैं तो रिफ्रेश नहीं होंगे ना फिर कहते हैं कि योग में बैठते हैं सिर भारी हो जाता है माथा दुखता है नींद आती क्यों आती है क्योंकि हमने समेटा ही नहीं हम स्व में स्थित हुए ही नहीं जैसे ही आप देह भान से न्यारे आत्मा स्वरूप में स्थित होंगे आप लाइट बन जाएंगे हल्का क्योंकि इस मिट्टी से डिटैच हो गए ना तो आप बिल्कुल लाइट हल्का हो जाएंगे दूसरा अभ्यास योग में कौन सा करते हैं बुद्धि से असली घर परमधाम में जाते जिससे मिलना हो बुद्धि से वहां जाना पड़ेगा देखो अभी अगर मैं कहती हूं कि आपके पिताजी तो जहां आपके पिताजी हैं वहां आप पहुंच गए सेकंड में पहुंच गए हम जिसको याद करते हैं वो जहां है वहां मन से पहुंच जाते हैं तो बाबा को याद करना या बाबा से योग लगाने का अर्थ क्या है भल शरीर से हम यहां हैं पर मन बुद्धि से परमधाम में जाना क्योंकि बाबा कहां रहते परमधाम रहते तो हमें देह और देह की दुनिया से पार जाना है हम सेकंड में पहुंचते पर ये प्रैक्टिस हमें रोज अनेक बार करनी है क्योंकि हम अब तक बुद्धि से देहभान में और दुनिया में ही रहते रहे तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा इसलिए हम रोज बाबा के घर में बाबा के सामने बैठकर ये प्रैक्टिस अपने मन बुद्धि को एजुकेट करते जैसे वो शरीर की एक्सरसाइज है ना एक ही प्रकार की एक्सरसाइज करने से वो मसल्स मजबूत होते हैं, वो फिजिकल है, ये हमारी मन बुद्धि की एक्सरसाइज है। इससे मन बुद्धि पावरफुल बनते, शक्तिशाली बनते, क्योंकि हम एक निश्चित विधि से मन को प्रैक्टिस कराते। पहले हम भटकते थे अनेक बातों में, तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती थी। इसलिए बाबा कहते हैं ना कई बार मुरली में कि भक्ति में तुम धक्का खाते थे, तो कईयों को अच्छा नहीं लगता है, कई सोचते हैं कि बाबा क्यों ऐसे कहते हैं। ऐसे नहीं, अब हम रोज सेंटर पर आते जाते हैं तो हम अब रोज सेंटर पर धक्का खाते। धक्का खाना किसको कहा जाता है? बिगर समझ, बिगर लक्ष्य मेहनत करना, उसे धक्का खाना, भटकना कहा जाता है। क्योंकि न समझ न लक्ष्य, तो बिगर लक्ष्य बिगर समझ मेहनत करना वो धक्के खाना भटकना है। लक्ष्य पूर्वक समझ पूर्वक अभ्यास करना उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। तो बाबा हमें पुरुषार्थ सिखाते हैं क्योंकि हम समझ पूर्वक करते हैं। इसलिए मन बुद्धि से घर जाते हैं, फिर बाबा के सामने शांति से बैठते हैं। बाबा कहते हैं ना, कई कहते हैं कि हमारा एक दो मिनट ही योग लगता है, फिर हम तुरंत नीचे आ जाते हैं। बाबा के सामने भी शांति से बैठ नहीं पाते, क्योंकि मन में अनेक कलह क्लेश की बातें भरी हुई हैं, तो बाबा के सामने भी शांति से बैठ नहीं पाते। इसलिए बाबा कहते हैं मन साफ चाहिए, क्लीन माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट बाबा कहते हैं, स्वच्छ मन और साफ दिल। देखो, जैसे आप पेट में कच्चा पक्का तला सड़ा बासी सब पेट में भरो तो शांति रहेगी? क्या होगा? गड़बड़ शुरू हो जाएगा ना। हमने यहाँ क्या भरा है? हाँ, कितना भरा है, आगे पीछे का, हाँ, इसका उसका, कितनी बातें हमने मन में भरी है, अच्छी बुरी भली, हाँ, आज की बरसों की। तो फिर यहाँ मन शांत रहेगा? तो जब मन में कलह क्लेश भरा है, किसी से नाराजगी है, वैर है, दुख है, उदासी है ना, ये सारी बातें मन में भरी हैं, तो बाबा के सामने भी हम शांति से बैठ नहीं पाते। इसलिए हम एक दो मिनट में नीचे आ जाते, हमारा योग टूट जाता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब मन को साफ करो, व्यर्थ भरना नहीं। अगर सारे दिन की दिनचर्या व्यर्थ की हो, तो जब आप बाबा की याद में बैठेंगे तो योग लगेगा? नहीं लगेगा। दिनचर्या सात्विक वास्तविक अंतर्मुखी चाहिए, तो योग सहज लगेगा। अगर दिन भर बहिर्मुखी है, सुबह पढ़ाई की और घर जाके बस्ता रख दिया, फिर दूसरे दिन उठा के आ गए। अगर सारा दिन बाबा ने क्या पढ़ाया, क्या कहा, अगर वो याद भी नहीं आता है, तो अभ्यास हम क्या करेंगे, है ना? प्रैक्टिस क्या करेंगे? सारा दिन हम दुनियादारी की बातों में रहे, हमने बीच बीच में प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या होगा? जब विशेष योग अभ्यास करने बैठेंगे तो मन को समेटना मुश्किल हो जाएगा, मेहनत लगेगी, क्योंकि सारा दिन हमें स्व में स्थित होने का, घर जाना, बाबा से मिलना, ये बीच बीच में प्रैक्टिस हुई नहीं। इसलिए हम कौन सा अभ्यास करते हैं दिन में? हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, हर घंटे एक मिनट बाबा की याद में स्थित होने का अभ्यास करते, फिर 5-7 बार ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, 3-3 मिनट का अभ्यास करते, भोजन के समय बाबा को भोग लगाते हैं। ये सारी प्रैक्टिस क्यों करते? ताकि विशेष अभ्यास के समय हम सेकेंड में समेट जाएं और बाबा से पहुंच जाएं। अगर बाबा के सामने हम शांति से बैठें, पूरा समेट कर फोकस होकर बैठे, शांत बैठना माना पूरा बाबा के प्रति फोकस होके बैठना, केंद्रित होकर बैठना। जैसे नहीं, कई बार हम यहां बैठे हैं पर हम फोकस नहीं होते, थोड़ा ध्यान इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा घर, थोड़ा वहां, होता है ना, फोकस नहीं होते हैं तो हम आनंद नहीं ले सकते। कहते हैं ना कि वे लोग ट्रैवल करते हैं, जब ट्रैवलिंग में होते हैं तो घर की बात याद करेंगे कि अरे फ्रिज में वो तो रह गया, बताना ही भूल गई, वो काम तो कहना रह गया, तो जब ट्रैवलिंग में है तो घर की बात याद करेंगे, इसलिए ट्रैवलिंग का आनंद नहीं ले सकेंगे। घर जाएंगे ट्रैवलिंग को याद करेंगे कि वो स्थान बहुत अच्छा था, ये था, वो था, तो घर का आनंद नहीं ले पाते, है ना? आपको निमज तो याद नहीं ना, हाँ है? तो ये है फोकस, बाबा की याद में जब भी बैठे ना, पूरा जिगरी एकाग्र होके बैठने का। भले आप आधा घंटा बैठो पर जिगरी, बस बाबा माना बाबा और कोई नहीं। वो जो याद का आनंद होगा ना, वो अनेक घंटों तक खुशी देता रहे। बाकी घंटा बैठे पर समेट कर नहीं बैठे तो आनंद नहीं आएगा, थक जाएंगे, मैंने बताया ना, माथा भारी हो जाएगा, नींद आएगी, ये सब होने लगेगा। बाबा से प्यार से बातें, क्योंकि बाबा हमारा सब कुछ है, पिता नहीं सिर्फ, सब कुछ है, सब कुछ है। इसलिए दिल की हर बात बाबा से, जो हमारा सब कुछ हो फिर बुद्धि कहीं जाने की बात ही नहीं रहेगी। बाबा हमारा सर्वस्व है। जब हम जीवन के सर्व संबंध बाबा से जोड़ देते हैं और दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि मेरा तो एक हाँ दूसरा न कोई, ठीक है दुनिया में है पार्ट प्ले करना है अच्छी तरह, पर हमें पक्का है कि हम किसके हैं, एक बाबा के। फिर आप देखो अपने आप आपका मन बाबा से बात करेगा। योग किसका नहीं लगेगा जो बाबा से प्यार नहीं करते, बात नहीं करते। जिनका मन शून्य हो जाता वो नींद में चले जाते। हमें तो सबसे अलग होकर बाबा से बात करनी है, प्यार करना है और उस प्यार में एकाग्र हो जाना। कितना वंडर है कि जो दुख देने वाले हैं वहां प्यार करने हम गए, जो सुख देने वाला मिला अब उनसे प्यार नहीं करते। तो योग में मेहनत लगती है, जिससे प्यार हो उनसे क्या बात करूं ये प्रश्न होगा, होगा नहीं, क्या क्या न कहूं, सारी बातें बता दूं दिल की। अरे इतने साल के बाद आप मिले, ये हुआ वो, बातें ही नहीं खुटेगी। होता है ना फ्रेंड्स मिलते हैं तो क्या करते हा? जिगरी बाबा को स्वीकार कर लेना है, ये है योग अभ्यास, रोज प्रैक्टिस करना। रोज अभ्यास चाहिए क्योंकि हमें देह भान में रहने का, इंद्रिय रसों में जाने का, मन बुद्धि से भटकने का ही जीवन में अभ्यास रहा। अब तक हमने वही किया ना संसार में, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था, है ना? देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, बोलने में, घूमने में, पहनने में, बुद्धि तो उसी में थी ना? है ना? अब हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो जो बनना है करना है वो बार बार हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ये हमारा पुरुषार्थ है और रोज रोज अभ्यास होने के बाद फिर आप अनुभव करेंगे बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ज्ञान सत्य है ना, और डायरेक्ट भगवान से योग है। जैसे ही निश्चय बुद्धि बनकर प्रैक्टिस करेंगे कुछ ही समय में हमारा योग बाबा से लग जाएगा। हमारी स्थिति योग युक्त बनती जाएगी, फिर हमें मेहनत नहीं लगेगी, हमें महसूस होगा कि मेरा बुद्धि योग बाबा से लगा हुआ ही है। भल हम इस दुनिया में रहते हैं नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, सेवा करते हैं, हरेक को कार्य है ना। आप घर में रहो, सेंटर में रहो, मधुबन में रहो, हरेक को सेवा तो करनी पड़े ना। हाँ, ऐसे थोड़ी हम यहाँ रहते हैं तो कोई काम ही नहीं करते, ऐसे हैं? हाँ, हरेक को कोई ना कोई कार्य तो करना ही है, पर सब कुछ करते हुए भी हमें महसूस होगा कि मेरा योग बाबा से इतना नेचुरल लगे। जैसे कहते हैं ना कि वो अंधेरे में भी खाते हैं तो भी हाथ कहाँ जाता है? मुख में, नाक में जाता है, आंख में जाता है? नहीं। क्यों? प्रैक्टिस, अभ्यास हो गया, मन को आदत हो गई। वो हम बताते हैं कि भी वो माताएं सिर पर पानी का मटका होगा, हाथ में पानी का मटका होगा, ये साथ से बच्चा पकड़ा होगा और सखी से बात करती होगी तो भी उसका वो स्थिर रहेगा, नेचुरल ध्यान रहेगा दो तीन मटके ऊपर। ऐसे हमारा योग बाबा से। हाँ, वो कर सकती है तो हमारा योग बाबा से नहीं लग सकता। अच्छा, भले मैं बोल रही हूं पर मेरा योग बाबा से हो सकता है कि नहीं? क्योंकि अब मुझे उनसे ही प्यार है, उनकी ही याद से प्राप्ति है। तो वो आप महसूस करेंगे कि मेरी स्थिति अब योगयुक्त है, योग लगाना नहीं पड़ेगा, मेरा योग बाबा से लगा हुआ ही है, ये हमें अनुभव होगा। और बाबा से योग हमें महसूस होगा, वो सुख, आनंद, प्यार, शांति अपने आप हमें मिलता जाता, अनुभव होता जाए, आत्मा अंदर से भरपूर होती जाएगी। देखने में लोग सोचते हैं ना, पता नहीं इन लोगों का योग कैसा है, ये कुछ करते नहीं है, बैठे रहते हैं, एक दो के सामने देखते रहते हैं, ये पता नहीं कौन सा योग है इनका। वो तो योग माना उल्टा सीधा हाथ पांव सब करना, तो वो समझते हैं कि वो योग है। हम यहाँ ऐसे स्थिर बैठे हैं सहज स्थिति में, पर हम मन बुद्धि से कहाँ जाते हैं, कैसे बाबा को याद करते हैं, अनुभव पाते हैं, वो तो उनको पता नहीं है। और ये चीज भागवत में लिखी है। उद्धव, उद्धव का पात्र आता है ना भागवत में, जिसने पढ़ा सुना होगा उनको मालूम होगा कि उद्धव ज्ञानी था और गोपियां प्रेम वाली थी। तो उद्धव गोपियों से पूछता है कि तुम कैसे याद करती हो? वो कहती है, क्या जवाब देती है कि कैसे क्या, हम तो निश दिन सांझ सवेरे हर पल हम तो उनकी याद में ही रहते हैं, योग कैसे लगा? क्योंकि उनका नेचुरल था ना, जैसे बाबा के लिए दादियां कहती है ना कि बाबा हंसते हंसते नारायण बन गए, माना सहज ही सहज बाबा संपूर्ण बन गए। कभी हमने बाबा को मेहनत करते नहीं देखा। और दादियां अपने अनुभव में क्या कहती है कि हम तो बाबा के प्यार प्यार में बाबा जैसे बन गए। हम तो प्यार प्यार में बाबा जैसे बन गए, हमें कभी मेहनत लगी नहीं। क्यों मेहनत नहीं, क्यों युद्ध नहीं? हमें मेहनत लग रही है ना, कशम कश हो रहा है, घर संभाले, नौकरी संभाले, समाज संभाले, क्या करें? हमें मेहनत, युद्ध क्यों? क्योंकि हमने दिल से बाबा को स्वीकारा नहीं। जब हम दिल से सत्य स्वीकार कर लेते हैं, फिर कोई मेहनत नहीं। थोड़ा ये भी, थोड़ा वो भी, तो मेहनत लगेगी, तो मेहनत लगेगी। जब दिल से स्वीकार, यही सत्य है, वही मुझे करना है, कोई मेहनत नहीं। क्योंकि जो हमारा समय, शक्ति, धन अज्ञान में, मिथ्या ज्ञान में, अंधश्रद्धा में, गलत रस्मों में, अज्ञानता में जो जाता था, वो खत्म, वो सारा अपने आप बाबा के तरफ लगेगा। तो हमें तो कोई मेहनत ही नहीं ना, नया कुछ करना हुआ ही नहीं ना। जो वेस्ट था वो हमने और ही बेस्ट बना दिया, तो मेहनत लगेगी कि खुशी होगी? तो बताओ, कौन कौन कह रहा है कि बस मैं बाबा से योग्युक्त हूं? बताओ, हाथ उठाओ जो कहते हैं मेरा योग बाबा से लग गया है अब। हाँ, बहुत अच्छा भाई, ताली बजाओ है? इतने सब बाबा के बच्चे योगी बन गए। और हमें स्पष्ट है कि हम एक दो घंटे के योगी नहीं है। हम कौन है? योगी जीवन वाले। ऐसा नहीं है सुबह शाम योगी और दिन में है भोगी, तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि बाबा के बच्चे पवित्र पर वियोगी ऐसा थोड़ी करना है कि दिन में मैं गुम हो जाऊं, कुछ अता पता ही नहीं। जैसे सारा दिन कोई मिले नहीं तो हम कहते हैं ना जो अपने, अरे भाई सारा दिन तुम्हारा कोई समाचार ही नहीं, कहाँ गुम हो गए, हम कहते हैं ना। तो बाबा भी सोचे गए, पता नहीं सारा दिन ये कहाँ गुम हो जाता है, सुबह शाम मिलने आ जाता है। तो ऐसा नहीं, हम एक दो घंटे के योगी नहीं, हम योगी जीवन वाले योगी। योग कोई क्रिया नहीं है जो हम सीख ले, घंटा आधा घंटा करते रहे। योग जीवन पद्धति है, जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है। हमारा जीवन योगी जीवन है, इसलिए हमारा टोटल, हमारा लक्ष्य, हमारा पुरुषार्थ, हमारी दिनचर्या, संग, पहरवाइश, आहार, विहार, व्यवहार, सब में परिवर्तन, सब में परिवर्तन आता है क्योंकि अब योगी जीवन है। पहले हमारा भोगी जीवन था, तो उसके अनुरूप हमारा लक्ष्य, पुरुषार्थ, दिनचर्या, संग, पहरवाइश, आहार, विहार, व्यवहार सब उनके अनुरूप था ना। अब हम योगी हैं, हमने जीवन जीने का योग मार्ग अपनाया है। संसार में बताते हैं ना कि जीवन जीने के दो मार्ग हैं, योग मार्ग और भोग मार्ग, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, ऐसा कहते हैं। श्रेय मार्ग माना कल्याण का मार्ग, प्रेय मार्ग माना मुझे जो अच्छा अच्छा लगे वो करना, वो प्रेय मार्ग। पर जरूरी नहीं कि उसमें कल्याण हो। जब से बाबा का सत्य ज्ञान मिला, हमने जीवन जीने का योग मार्ग अपनाया। इसलिए पहले जीवन में लौकिक, भौतिक, सांसारिक लक्ष्य था, है ना? कोई आत्म कल्याण का लक्ष्य था भाई? नहीं, पहले तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं था। दूसरा, भक्ति भी करते थे या भगवान को भी याद करते थे, उसमें भी खुद के कल्याण और उन्नति का कोई लक्ष्य नहीं। बहुत बहुत तो जन्म मरण से छूट जाए या जो महान बने उसका वंदन गायन दर्शन करना, बस वही था ना, है ना? मुझे ऐसा दिव्य बनना है, ये लक्ष्य था? नहीं था ना। अब हमारा लक्ष्य क्या है? हमें बाबा जैसा बनना है, हमें मनुष्य से देवता बनना है, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अब ये लक्ष्य है, इसलिए अब हमारी दिनचर्या भी हमें बदलनी होगी। देरी से सोते थे, देरी से उठते थे, अब टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ। पहले रात रात जागरण करते थे और फिर सारा दिन सोते थे। अब बाबा कहते ऐसा जागरण नहीं। निंद्रा जीत बाबा किसको कहते हैं? टाइम से सो जाओ, 10:30 सुबह 3:30-4 बजे उठ जाओ। दिनचर्या भी अंतर्मुखी, हमारा आहार शुद्ध। हम योगी हैं तो हमारा आहार भी शुद्ध, सात्विक, योगयुक्त, पवित्र। तो हमें वो भी परिवर्तन करना है, हमारे ड्रेस भी स्वच्छ, सात्विक, मर्यादा पूर्ण। भले आप दुनिया में रहते हैं, आप लौकिक में हैं, रंगीन भी वहां पहनेंगे, बाबा उसकी मना नहीं करते। ये तो हम स्कूल में आते हैं बाबा की पढ़ाई में तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो ये हमारा यूनिफॉर्म है। बाकी दुनिया के हिसाब से आप रंगीन भी पहनेंगे क्योंकि आपका डबल रोल है ना, आपका डबल रोल है। हम सिंगल रोल वाले, आप डबल रोल में पार्ट प्ले करते, तो आपको वो पहनना पड़ेगा, पर मर्यादा पूर्ण, सात्विक, बॉडी कॉन्शियस बनाने वाला ड्रेस नहीं, है ना? मैं भी आत्मभिमानी रहूं और मुझे देखकर दूसरे भी आत्मभिमानी रहे, उसकी बुद्धि देह में न जाए। बाबा कहते हैं ऐसा ड्रेस पहन। हमारा संग भी अच्छे लोगों का, परख तो सकते हो ना अब किसका संग करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए। दुनिया में भी परख सकते हो, यहां भी परख सकते हो ना कि यहां भी हमें किसका संग करना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, जो बाबा के पक्के सच्चे ज्ञानी योगी आत्मा है उनका संग करते हैं। तो आहार विहार व्यवहार सब में परिवर्तन तो प्रैक्टिकल योगी जीवन कहा जाए। ज्ञान योग रोज क्लास हम करें पर हमारा खाना पीना उठना बैठना वही वापस कलयुगी हो तो उसको योगी जीवन नहीं कहेंगे, है ना। तो हमारा लक्ष्य योगी जीवन बनाना और योगी जीवन से फिर हमें फरिश्ता देवता बनना है। हाँ, बाबा ने कितनी ऊंची मंजिल हमें दी है ना। तो सभी बाबा के योगी बच्चे बराबर योगी जीवन वाले बच्चे, सिर्फ सुबह शाम के योगी नहीं। हाँ, जीवन सदा होती है ना। आप ऐसा कहेंगे कि रोज मैं 2 घंटा जीता हूं बाकी ऐसे होता है? जीना माना जीना निरंतर होता है ना। तो योगी जीवन बिल्कुल, आप लोग तो एग्जाम्पल है ना। देखो हम ज्ञान देते हैं, लोग हमें क्या कहते हैं, बहन जी आप तो छोड़कर बैठे हैं तो आप योग करेंगे, तो हम उस समय किसको बताते हैं? आपका एग्जाम्पल देते हैं ना कि इन सबको देखो, इन सबको देखो, ये घर में भी रहते हैं और योगी भी है ना। तो एग्जाम्पल है, इसलिए अब बाबा हम बच्चों से ये सहयोग चाहते हैं कि हमारा इतना श्रेष्ठ योगी जीवन हो जो हम नेचुरल फरिश्ता बन जाए। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के महावाक्य हैं कि कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा मत करो। एक और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जो श्रीमद् भगवद गीता में कही गई है, जो बाबा की मुरलियों से भी हम सुन ही रहे हैं, कि मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय लाभ हानि इन सब में स्थिति को समान रखो। तो गीता बहन का जीवन जो हमने देखा है अनेक वर्षों से, कि आपका जीवन इसी अनुरूप है। ये 2 महावाक्य आपके जीवन का ही परिचय हैं। 1969 में आपको गुजरात से बाबा का परिचय मिला, मधुबन से परिचय मिला।
मधुबन से ही मिला। अच्छा, पिताजी मेरे ज्ञान में आए, मेरे पिताजी आए हैं लौकिक।
अच्छा अच्छा अच्छा, पिताजी ज्ञान में आए, लौकिक पिताजी बैठे।
45 ईयर हुए बाबा के ज्ञान में, पिताजी पहले आए और हम सब आए।
और साउथ गुजरात बोर्ड मैट्रिक का बोर्ड जो होता है उसकी आप टॉपर रही, और 1972 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए तुरंत समर्पित किया। गुजरात में भरूच, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद अनेक जगहें सेवाएं दी, और फिर भावनगर में 14 वर्ष तक आपने एज अ सब जोन इंचार्ज आप महानिमित रहे। और 1993 में जब बाबा का यहाँ ज्ञान सरोवर बना, जो हमारी एकेडमी है, तो दादियों के बाबा के आदेश अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार आप यहाँ पर आए और यहाँ ज्ञान सरोवर आप सभी जानते ही हैं, वहाँ का पूरा रिसेप्शन, आवास निवास, पूरा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वो तो आप संभालते ही रहे, लेकिन उसके अलावा अनेक प्रकार के जो विषयों को स्पष्ट करना, क्लासेस लेना, चाहे वो राजयोग शिविर के क्लासेस रहे हों, चाहे वो जो विंग्स के कार्यक्रम होते हैं उनमें क्लासेस हों, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग जो नीचे शांतिवन में होते हैं उनमें क्लासेस हों, चाहे अन्य कोई प्रोग्राम्स हैं उनके क्लासेस, आप सदा ही बहुत ही गहराई से ज्ञान के विषयों को आप स्पष्ट करते हैं और अपने जीवन में भी आपने उनको पूरी रीति से अपनाया है। और बिजनेस विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं और अनेक प्रकार की बिजनेस विंग की सेवाओं में भी आप पार्टिसिपेट करते रहते हैं। आप यहाँ आए हमारी इस योग तपस्या मौन भट्टी में, अनेक भट्टियाँ यहाँ काफी समय से चल रही हैं, नीचे भी ऊपर भी सब जगह आपका बहुत श्रेष्ठ योगदान रहता है। तो बाबा की शिक्षाओं के अनुरूप आपका जीवन सदा बना रहता है और सदा ही उसको आगे बढ़ाने में मैं हमेशा सोचती हूँ, और ये बात हमेशा मैं बहुतों से शेयर करती हूँ कि जब हम इस आध्यात्मिक जीवन में चलते हैं तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति का जो ग्राफ है वो क्या है, क्या वो बढ़ रहा है आगे। बाकी जो फिजिकल बातें हैं इस आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत सारी बातें हैं, भाई हम ये क्लास कराते हैं, हमने इसमें पार्टिसिपेट किया, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूल है जो आध्यात्मिक उन्नति है उसका ग्राफ कहाँ है। तो जो गीता दीदी के जीवन से अनुभव किया है कि इट इज ऑलवेज राइजिंग, तो वो एक बहुत बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे कि हमेशा उनका जीवन आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता जाता है, सभी का बढ़ता है, आपका भी ऐसे अनुभव किया है, तो बहुत बहुत वेलकम भी है। हमारी इस भर्ती में आप आए और आपने अपने विचारों को स्पष्ट किया और बहुत बहुत धन्यवाद भी है, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये प्रभु का वरदान है, योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है, दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है योगी।